शांति। इस ब्राह्मण जीवन में आप हम सभी का लक्ष्य है कि कदम दर कदम हम सदा आगे बढ़ते रहें और हमारी जो मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है, उसको हम हासिल कर सकें। तो इस ब्राह्मण जीवन में हम हमेशा आगे बढ़ते रहें, उसके लिए बाबा हम सभी को अनेक प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, अनेक प्रकार की विधियां बताते हैं, क्योंकि बाबा हमारा उस्ताद है। तो उसको मालूम है कि आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, कौन कौन से कारण होते हैं, उनको आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे कारण का निवारण करना है, कैसे समस्याओं का समाधान करना है। तो बाबा हमें अनेक प्रकार की विधियां बताते हैं, उनमें से एक विधि है संतुलन की कला। इस ब्राह्मण जीवन में हम सफल होना चाहते हैं, अपनी मंजिल पर हंसते बहलते खुशी खुशी आगे बढ़ते हुए पहुंचना चाहते हैं, तो हमारे इस ब्राह्मण जीवन में संतुलन की कला, आर्ट ऑफ बैलेंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसके हम जीवन में बार बार कभी सफल कभी असफल होते रहते हैं। तो आर्ट ऑफ बैलेंस हम सभी के जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है। ब्लेसिंग अर्थात दुआएं, आशीर्वाद, और जहां ब्लेसिंग होती है वहां पर जीवन में खुशहाली होती है। हाँ जी, ब्लिसफुल लाइफ। तो ब्लिसफुल लाइफ में क्या होता है? आनंद, मौज, खुशियां ही खुशियां। तो इस ब्राह्मण जीवन में बैलेंस रखने के लिए आज का विशेष टॉपिक है साधन और साधना का बैलेंस। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में हम तपस्वी आत्माएं हैं, हमारा जो तपस्या का जीवन है और तपस्या के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। लेकिन इस तपस्या के जीवन में हमें साधनों का भी सहयोग लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी तपस्या सिर्फ हमारे स्वयं तक ही सीमित नहीं है, लेकिन हमारी तपस्या स्व परिवर्तन के साथ साथ विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए भी है। तो विश्व परिवर्तन का कार्य करने के लिए हमें साधनों को उपयोग में लाना जरूरी है। तो यहाँ दो बातें हैं, एक है साधन और दूसरे हैं साधना, और दोनों का बहुत विस्तार है। जैसे कि दोनों का अपना एक संसार है, जैसे साधना का संसार है उसी प्रकार साधनों का भी अपना एक संसार है। तो इन दोनों संसारों को हमें क्या करना है, बैलेंस में रख करके चलना है। तो सबसे पहली बात है इसके बैलेंस के लिए कि हमें इन दोनों के महत्व को जानना है, नो द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ, साधना और साधन। तो उसमें पहली बात है कि हमें साधना के महत्व को जानना है कि साधना का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो साधना का ब्राह्मण जीवन में क्या महत्व है, सबसे पहली बात है कि साधना के माध्यम से हम अपना स्वयं का परिवर्तन करते हैं। बिना साधना के हम अपने जीवन का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो स्वयं को परिवर्तन करने के लिए, स्वयं को संपन्न बनाने के लिए, स्वयं को भरपूर करने के लिए साधना के बहुत बहुत जरूरत है। और उस साधना में हम 7S को भी अप्लाई करते हैं, 7S। तो 7S में पहला 7S है स्वस्वरूप का अभ्यास कि हम स्वयं कौन है, स्वस्वरूप का अभ्यास कि हम स्वयं कौन है, हमारा स्वरूप क्या है। तो हम सभी का स्वरूप क्या है, चमकती हुई ज्योति, चमकती हुई मणि। तो हमें अपने साधना के अभ्यास में स्वस्वरूप की प्रैक्टिस करनी होती है, प्रैक्टिस करते हैं हम। तो पहला है स्वस्वरूप का अभ्यास, दूसरा है स्वदेश, स्वदेश की प्रैक्टिस कि हम वर्तमान समय संसार में तो हैं लेकिन हम वास्तव में रहने वाले कहाँ के हैं। यदि हमें स्वदेश की स्मृति रहती है तो इस संसार में रहते हुए हम इस संसार से उपराम रहते हैं, न्यारे रहते हैं। तो दूसरा है स्वदेश की स्मृति, तीसरा है स्वलक्ष्य कि हमारा लक्ष्य क्या है। वर्तमान समय हम साधना कर रहे हैं तो हम इस साधना से हमें कहाँ पहुँचना है, हमारा लक्ष्य क्या है। यदि हमें अपना लक्ष्य क्लियर है तो हम उसके तरफ आगे कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं। तो स्वलक्ष्य भी हमें क्लियर होना चाहिए, याद रहना चाहिए। और चौथी बात है स्वलक्षण, हमारे लक्षण क्या क्या हैं। तो अभी जो हमने 7 बातें देखी थी, जो आत्मा के 7 गुण, पवित्रता, ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, तो जो आत्मा के 7 गुण हैं उन गुणों को हमें अपने आप में धारण करना है, जो हमारे वास्तव में थे, अभी वर्तमान समय हमारे जीवन में वो नहीं है, अभी हमें पुनः फिर से उनको साधना के माध्यम से जीवन में लाने हैं। तो स्वलक्षण, उन पर हमारा फोकस रहता है, उन लक्षणों को अपने जीवन में हम प्रैक्टिकल में लाने का पुरुषार्थ करते हैं। और अगला है स्वमान, बाबा ने हमें इस ब्राह्मण जीवन में तपस्या करने के लिए अनेक प्रकार के स्वमान दिए हुए हैं, और हमारे एक एक स्वमान में बहुत बड़ा बल है। तो उस स्वमान के माध्यम से भी हम अपने जीवन में अपनी विशेषताओं को, अपनी योग्यताओं को, अपने में पावर भरते हैं, अपने में सद्गुणों का विकास करते हैं, जो हमारी वास्तविक स्टेज है उसको लाते हैं, और उसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। ये कितने हो गए, 5। अगला कौन सा होगा, स्वधर्म। स्वधर्म क्या है, हम सभी का पवित्रता और शांति, मुरलियों बार बार जाता ना कि आत्मा का स्वधर्म है पवित्रता और शांति। तो उस स्वधर्म को भी हम जीवन में लाने का पुरुषार्थ करते हैं, ये भी हमारे पुरुषार्थ का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और लास्ट कौन सा होगा? सुकरम। और आठवां? स्वकार्य। कि हमारा वर्तमान समय हमारा लक्ष्य क्या है? सुकरम स्वकार्य। तो पहला ये 7S था और दूसरा 7S, सेकंड 7S, नहीं जो 7 बातें और भी हमें साधना में अप्लाई करनी है। तो सेकंड 7S कौन सा होगा? फर्स्ट है सोल कॉन्शियसनेस। फर्स्ट है सोल कॉन्शियसनेस। तो हमें साधना के मार्ग में सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करना होता है। आत्मा बनने की प्रैक्टिस, आत्मामानी बनने का अभ्यास। और सेकंड है सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस, अर्थात भगवान को याद करने की हमें साधना करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। भगवान जो सर्व समर्थ है वो वर्तमान समय हमारा सर्व संबंधी बनाए, तो उसके साथ रहने का, उससे बातें करने का, उसके साथ सारे संबंधों का अनुभव करने का, वो हमारी साधना का एक विशेष पार्ट है, अंग है। और तीसरा है समान, सेल्फ रेस्पेक्ट, समान। तो बाबा ने जो हमें समान दिए हुए हैं उन समानों को भी अमल में लाने का हमें पुरुषार्थ करना होता है और करते हैं हम। और चौथा है सेल्फ रेस्पेक्ट, बोला ना, सेल्फ रेस्पेक्ट। और चौथा है श्रीमत। इस साधना के मार्ग में बाबा ने हमें बहुत सारी श्रीमत दी है, सुबह से लेकर रात तक हमें कैसे चलना है, हमारी दृष्टि वृत्ति कैसी हो, हमारे बोल क्या हो, हमारे संबंध संपर्क कैसा होना चाहिए, बाबा ने हर कार्य के लिए हमें श्रीमत दी हुई है। तो उस श्रीमत को फॉलो करना हमारा जो विशेष पुरुषार्थ है, यह पुरुषार्थ का एक विशेष भाग है। अगला है सरेंडर। इस पुरुषार्थ में हमें आगे बढ़ना है तो हमें बाबा के प्रति समर्पित भाव होकर के चलना है। और उस समर्पित होकर चलने के लिए जो भी हमारे पास, जिनको हम मेरा कहते हैं, उन सबको समर्पित करना है, सरेंडर करना है। चाहे तन है, मन है, धन है, मन बुद्धि संस्कार, कमजोरियों को, जो भी कमजोरियां हैं उनको सरेंडर करना है। अगला 7S कौन सा है? ये कितने हो गए? 6 हो गए। सर्विस भी ब्राह्मण जीवन का एक विशेष लक्ष्य है, इस पुरुषार्थ का, इस आध्यात्मिक पुरुषार्थ का, कि जैसे हम अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का अभ्यास करते हैं, अमल में लाते हैं, उसी प्रकार से संसार की अन्य आत्माओं को भी हमें उनकी सेवा करके उनको भी लायक बनाना है, बाप के नजदीक लाना है, बाप के वर्षे का अधिकारी बनाना है। तो 7S हो गए। और 7वां कौन सा था? सेल्फ प्रोग्रेस, स्वोन्नति का पुरुषार्थ। तो ये 7S। तो इस पुरुषार्थी जीवन में हम इस 7S का प्रयोग करते हैं, उसको प्रैक्टिस में, उसको अमल में लाते हैं। तो जानना है पहले हमें कि इस साधना के मार्ग में इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे पुरुषार्थ को, बहुत सारी बातों का पुरुषार्थ करते हैं। जो आत्मा आधा कल्प से देवभान के बस है, वो देवभान को तोड़ने के लिए हम अशरीर बनने का अभ्यास करते हैं। और जो अनेक प्रकार के पुरानी स्मृतियां हैं, जिसको पास्ट ट्रॉमेटिक मेमोरीज कहते हैं, उनसे अपने आप को कैसे फ्री करें, उसके लिए भी हम प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। तो जीवन में अनेक प्रकार की ऐसी बातें हैं जिनके लिए हम साधना का प्रयोग करते हैं, साधना को अमल में लाते हैं। तो जैसे ही इस ब्राह्मण जीवन में साधना का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बिना साधना के हम इस जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं, अपने मंजिल को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से साधनों का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि साधन हमारे इस ब्राह्मण जीवन में, साधना में एक बहुत अपना सहयोग का पार्ट अदा करते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि हम कौन कौन साधनों को यूज करते हैं। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, गाड़ी, माइक, लैपटॉप है और हम अनेक प्रकार के साधनों का यूज करते हैं ना। कुछ संचार के साधन होते हैं, कुछ हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे यूज के साधन होते हैं। तो उसमें क्या क्या साधन हम यूज करते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन है, वो हमारे यूज की चीज़ें हैं। कूलिंग है, कूलिंग हीटिंग के साधन हैं, एसी है, कूलर है, फैन है। इस साधना के लिए, फुटसाथ के लिए हम अनेक प्रकार की लाइट का उपयोग करते हैं। लाल लाइट है, माइक का हम उपयोग करते हैं और गाड़ी। और क्योंकि साधन जो है वो संसार में तो सभी आत्म साधनों के अधीन है, और संसार में हर एक का पुरुषार्थ है कि साधनों को इकट्ठा करके उनसे सुख लेना। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में हम साधनों को इसलिए उपयोग में नहीं लाते हैं कि उनसे हम सुख लें। हमारा लक्ष्य ये है कि साधनों के माध्यम से हम साधना अच्छी कर सकें या फिर सेवाओं को हम आगे बढ़ा सकें। तो हमें देखना है कि साधनों का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है, इम्पोर्टेंस है। क्योंकि यदि हम साधनों का उपयोग नहीं करते तो उससे फिर जो हमारी स्वयं की साधना है या जिस साधना के लिए हम जो सेवाएं करते हैं, संसार के अन्य आत्माओं की सेवा करने का जो हमारा लक्ष्य है, उसमें हम सफल नहीं हो सकते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में कई आत्माओं के ऐसे अनुभव हैं या उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा लक्ष्य बना के रखा हुआ है कि जैसे साकार बाबा ने उस समय जो साधन नहीं थे, वर्तमान समय जो साधन है, तो बाबा ने साधनों को उपयोग में नहीं लाया, बहुत कम से कम लाया। तो वो भी सोचते हैं कि हमको फॉलो फादर करना है। तो जबकि साकार बाबा ने साधनों को उपयोग में नहीं लाया तो हम उनको उपयोग में क्यों लाएं? तो हमको बाबा को फॉलो करना है। लेकिन देखा जाता है कि उन आत्माओं के जीवन में या उनकी सेवा में कोई भी उन्नति नहीं होती है। 20 साल पहले 30 साल पहले जो उनकी सेवाएं थी, वर्तमान समय भी उनकी वही सेवाएं। तो इसलिए साधनों का उपयोग करना आवश्यक है, लेकिन कंट्रोल में। तो पहली बात है कि नो द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ, कौन कौन से साधन और साधना का। और दूसरी बात है बाप दादा के डायरेक्शंस, बाबा ने साधनों के लिए क्या क्या कहा हुआ है। बाबा ने साधन आपके लिए बने हुए हैं और साइंस आपके लिए निकली हुई है। बाबा ने कहा कि साइंस अभी 100 साल पहले से निकली हुई है, उसके पहले ये साधन नहीं थे, तो ये साइंस के साधन आपके लिए निकले हुए हैं। और तो बाबा ने कहा साधनों के अधीन नहीं होना है। तो इस कई मूल्यों बाबा ने साधनों के बारे में हमें शिक्षाएं दी हुई हैं। तो उन साधनों के बारे में बाबा ने कहा कि साधन जो हैं वो आपके पुरुषार्थ में या सेवाओं में सहयोग के लिए, लेकिन साधनों के अधीन नहीं होना है। साधन होते हुए भी आपको बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज रखना है, वो सदा कायम रहे। साधनों के अधीन होकर के आपकी तपस्या, आपका पुरुषार्थ छूट न जाए। तो हमें जो बाबा के डायरेक्शंस हैं उनको अमल में लाना है। यदि हमें जीवन में साधन और साधना का बैलेंस लेकर चलना है तो बाबा ने जो हमें साधनों के उपयोग के लिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं, जो श्रीमद दी है, उसको हमें फॉलो करना है। तो बाबा ने कहा कि साइंस की जो साधन है वो आपके पुरुषार्थ का फल है, आपके योग का फल है, लेकिन उस योग के फल को आप उसका सुख लेने में व्यतीत नहीं कर देना है। ये साधन जो है वो आपकी सेवा को वृद्धि करने के लिए एक माध्यम है, तो उनको सेवाओं में यूज करना है, न कि स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के कंफर्ट के लिए। तो उसके लिए हमें साधनों को यूज करते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज रखना है। साधनों की संभाल भी करनी है, लेकिन साधनों में मैं पढ़ना है कि ये मेरे लिए हैं या मुझे मिले हैं, सिर्फ मेरे लिए हैं। जैसे कि कोई भी साधन है, मोबाइल है या कोई भी गाड़ी है, यदि उसमें कुछ नुकसान होता भी है तो उसमें ऐसा अटैचमेंट ना हो कि बाद में दुख की अनुभूति हो, हमारी साधना डामाडोल हो जाए। तो साधनों का उपयोग करते हुए हमारे बेहद की वैराग्य वृत्ति कायम रहे, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तभी हम अपने इस जीवन में साधन और साधना का बैलेंस कायम रख सकेंगे। हाँ, तो बाबा ने कहा कि ये साधन जो है वो यज्ञ की स्थापना के समय भी साधन कम थे, ना के बराबर थे, और बाबा ने कहा कि अंत में भी साधन नहीं रहेंगे। ये साधन सिर्फ आपके सर्विस के लिए निकले हुए, इसलिए अंत में साधन नहीं रहेंगे, तो उन साधनों के वर्तमान समय अधीन नहीं हो जाना है, क्योंकि अभी यदि अधीन होगा तो अंत में आपको फिर बहुत कष्ट होगा, बार बार आपको बुद्धि को वो खींचेंगे, फिर साधना उसमें आप नहीं कर सकेंगे, फिर उस समय अशरीर बनने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी मुरली बाबा ने कहा कि साधन यज्ञ की स्थापना के समय साधन कम नहीं थे, साधन बहुत थे, लेकिन उस समय सर्विस नहीं थी, इसलिए साधना का वायुमंडल था, तो साधना का वायुमंडल होने के कारण साधनों में कोई किसी का अटैचमेंट नहीं था। साधन होते हुए भी हर एक के अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति की भावनाएं थी, तो बाबा ने कहा उन्हीं भावनाओं को अभी इमर्ज करके चलना है, क्योंकि अभी साधन बहुत हैं, और बाबा ने कोई मुरली में कहा कि साधन तो यहाँ पर अभी बढ़ने हैं, विमानों की लाइन लगनी है, तो हमारा ऐसा पुरुषार्थ ना हो कि हम उसके इंतजार में रहें कि यहाँ विमानों की लाइन लगेगी तो हम उसका उपयोग करेंगे। हाँ, तो वो इंतजार में नहीं रहना है, लेकिन हमें अपनी साधना को कायम रखना है, साधनों के अट्रैक्शन में या उनके इंतजार में नहीं रहना है। हाँ, साधनों का मोह कि और भी साधन हो और भी साधन हो, क्योंकि साधन सब विनाशी साधन है, साधन विनाशी है, और साधन आज हैं कल नहीं रहेंगे, यदि होंगे भी तो उनका रूप बदल जाएगा, लेकिन हमारी साधना हमेशा कायम रहती है, और साधनों से हमारे अंदर कई नेगेटिविटी पैदा होती है। हम किसी में देखते हैं कि किसी के पास कोई साधन है और हमारे पास नहीं है, तो फिर ईर्ष्या पैदा होती है, जेलसी का भाव आता है, फिर बाद में अन्य कई युक्तियां रचते हैं कि हम उन साधनों को कैसे कलेक्ट करें, तो इसलिए हमें साधन होते हुए भी उनके प्रति लगाव ना हो, बेहद वैराग्य की वृत्ति की भावना हो। तो बाबा ने जो साधनों के लिए हमें शिक्षाएं दी हैं उनको हमें फॉलो करना है। और अगली पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल, संयम। संस्कृत में एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जते, क्योंकि हर जो भी अति होती है, हर चीज की अति अंत में दुखदायी होती है, तो इस साधना के मार्ग में हमें किसी चीज के अति भी नहीं जाना है, क्योंकि साधना के हम अति में जा रहे हैं और साधनों को हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में समस्या खड़ी करते हैं। जैसे पहले कहा कि कई आत्माओं ने ऐसे दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं, जैसे कि शांति वन में एक बार कुमारों की भट्टी थी, तो उस समय कुमारों की भट्टी में नए नए मोबाइल्स निकले हुए थे, तो उस समय कहा कि भाई इस समय सभी अपने अपने मोबाइल को बंद रखें, कम से कम यूज करें, और फिर उनको ये भी कहा कि कौन कौन ऐसे हैं जो मोबाइल को छोड़ना चाहते हैं, तो कई कुमारों ने उसमें हाथ खड़े किए कि आज के बाद हम मोबाइल यूज नहीं करेंगे। तो क्या ऐसी प्रतिज्ञा वर्तमान समय पॉसिबल है? नहीं, हमेशा जीवन भर उसको यूज नहीं करेंगे, वो तो उनको मालूम जिन्होंने प्रतिज्ञा ली है। तो क्योंकि साधन जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। तो जैसे देखो, बाबा के समय में, पहले साकर बाबा के समय में कोई माइक नहीं थे, है ना, साकर बाबा के समय में माइक नहीं थे, लेकिन अभी इस समय कोई कहे, कोई चाहे कि हम माइक पर मुरली नहीं सुनाएंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? साकर बाबा ने माइक को यूज नहीं किया, लेकिन अव्यक्त बाप दादा ने माइक को यूज किया, क्योंकि समय बदल चुका है, तो समय के अनुसार हमें साधनों को यूज करना आवश्यक है, लेकिन यूज करते हुए उनसे न्यारा पैरा होकर के, अधीन होकर के नहीं, तो उसके लिए हमें कंट्रोल में रखना है, साधनों को यूज तो करना लेकिन कंट्रोल में, साधनों में हम खो ना जाएं, इस बात का ध्यान रखना है। और अगली बात है चेकिंग, तो हमें इस ब्राह्मण जीवन में चेकिंग करनी है कि साधन और साधना दोनों की हमें बार बार चेकिंग करनी है कि किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि साधना में मेहनत है और साधनों में कोई भी मेहनत नहीं है, उनसे सहज ये सुख की अनुभूति होती है, उनसे हम जो चाहे वो कार्य सहज कर सकते हैं। लेकिन साधना में मेहनत है, तो हमें बार बार चेक करना है कि वर्तमान समय हमारा पलड़ा किस तरफ भारी है। मोस्टली साधनों तरफ भारी होगा, तो यदि हम बार बार चेकिंग करेंगे तो अपने आप को हम जो साधनों का प्रभाव है, जो साधनों की आकर्षण है, उससे अपने आप को हल्का करके और हम दोनों का बैलेंस रख सकेंगे। अगली बात है अटेंशन। किस बात का अटेंशन? अटेंशन रखना है कि हम वर्तमान समय दोनों का बैलेंस रख के चल रहे हैं या हम किसी एक के अति में जा रहे हैं, क्योंकि अति हमेशा नुकसानकारक होती है। यदि हम एक बार साधनों के बहाव में बह गए और लंबा समय तक उसके प्रभाव में रहे, तो लंबा समय बीतने के बाद जो उसकी रिजल्ट होगी वो क्या निकलेगी? पश्चाताप। तो इसलिए हमें पहले से अटेंशन रखना है कि हम वर्तमान समय क्या कर रहे हैं, उसको हम कितना यूज कर रहे हैं, कितनी उसकी जरूरत है। जरूरत है उतना यूज कर रहा है कि उसके अलावा हम और कुछ भी कर रहे हैं। साधन जो है वो हमारे स्वपुरुषार्थ के लिए है या फिर सर्विस के लिए, सुख लेने के लिए नहीं। कहीं हम सुख लेने में उसको अप्लाई तो नहीं कर रहे, तो उसके लिए हमें बार बार अटेंशन रखना है। अगली बात है ड्रिल। बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा है कि इसकी ड्रिल करो, कि अभी हम साधनों को यूज कर रहे हैं और अभी हम साधनों से निहारे हैं। तो ये हमें बार बार देखना है, इसकी हमें ड्रिल करना है, अभ्यास करना है कि अभी हम साधनों को यूज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इनके तुरंत उसके बाद हम अशरीरपन का अनुभव भी कर पा रहे हैं? तो ये हमें बार बार ड्रिल भी करनी है। यदि हम ड्रिल करेंगे तो अपने आप को हम देख सकेंगे, जान सकेंगे कि हम दोनों का बैलेंस कहां तक रख पा रहे हैं। तो ड्रिल भी करनी है। और अगली बात है कि नो द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट, इनका लाभ क्या है। यदि हम दोनों का बैलेंस रख करके चल रहे हैं तो इससे क्या फायदा होगा? हमारे जीवन में साधना भी है और साधन भी है। यदि हम दोनों का लाभ ले, दोनों को हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं, तो इससे क्या फायदा होगा? पहली बात है ब्लिस। बैलेंस से ब्लिस मिलती है। ब्लिस अर्थात जीवन में एक सुकून का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा, हर बात में हमें सफलता मिलती रहेगी। हम बार बार हलचल में नहीं आएंगे, बार बार हमारी स्थिति डामाडोल नहीं होगी। अभी हमारी खुशी का पारा सातवें आसमान पर है और अभी धराशाई, तो ऐसा नहीं होगा। हमेशा हमारा जो पारा है वो बढ़ता रहेगा, स्टेबल रहेगा या फिर बढ़ता रहेगा। बार बार डामाडोल नहीं होगा, डगमग नहीं होगा। तो पहली बात है कि उससे हम उनको ब्लेस का अनुभव होगा। और दूसरा उसका फायदा क्या है? ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? जब हम साधनों को यूज करते हैं अन्य आत्माओं की सेवा में, तो उन आत्माओं से हमें ब्लेसिंग मिलती है। आज जो वर्तमान समय हमारी सेवाएं बढ़ रही हैं, उसका एक बहुत बड़ा आधार है कि हम दोनों का बैलेंस रख करके चल रहे हैं। इसलिए हर प्रकार के आत्माओं की हम सेवा कर पा रहे हैं, तो इससे हमें अन्य आत्माओं की भी ब्लेसिंग मिल रही है जो हमारे पुरुषार्थ में सहयोगी हैं। और क्या क्या फायदा इससे है? बाप को प्रत्यक्ष करने का ये एक साधन है। दोनों का बैलेंस रख करके हम भगवान को प्रत्यक्ष कर सकते हैं और कर भी रहे। आज वर्तमान समय घर घर में हर एक आत्मा संस्था के बारे में या ब्रह्मा कुमारी के बारे में, भगवान के बारे में बहुत कुछ सीख रही है, बहुत कुछ उनको अनुभव हो रहा है। तो उसका भी आधार है कि हम इन दोनों का बैलेंस लेकर के चल रहे हैं। और इनसे क्या क्या फायदे हैं? हाँ, दोनों के बैलेंस से फायदे। हाँ, इससे हमारा समय वेस्ट नहीं होता है। नहीं तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जब ये साधन नहीं थे, तो उस समय साधन क्या थे? बैलगाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी या ऊंट गाड़ी। तो उस समय लोगों को कहीं आने जाने के लिए इनको यूज करना पड़ता था। कोई अगर यात्राओं पर जाते हैं तो बैलगाड़ी से जाएंगे, घोड़ा गाड़ी से जाएंगे, लेकिन उसमें कितना समय लगता था? एक सप्ताह, दो सप्ताह, एक मास। लेकिन आज वर्तमान समय यदि हम उन स्थानों पर जाना चाहें तो कुछ घंटे या कुछ दिन में जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साधन है। तो उससे हमारा समय कितना बचता है, कितना बड़ा फायदा है कि इन साधनों को यूज करके हम अपने समय को बचा सकते हैं और उस समय को हम साधना में यूज कर सकते हैं। और किसी के जीव वर्तमान समय इन साधनों के माध्यम से हम दूसरों से कांटेक्ट रख सकते हैं। पहले के समय में हम किसी से किसी के समाचार लेने के लिए या अपना समाचार किसी को देने के लिए पत्र से हम उनको लेन देन करते थे, लेकिन आज के समय में हम किसी से भी एक सेकंड में बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से मैसेज दे करके, मैसेज ले करके दूसरे का समाचार लेना, अपना समाचार देना, या कहीं कोई हम प्रोग्राम करने वाले हैं तो एक मैसेज से हम अनेकों को मैसेज दे सकते हैं, उनसे हम कांटेक्ट स्थापित कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा ये फायदा है। और क्या क्या फायदे हैं? इससे समय बचता है, इससे एनर्जी बचती है। तो हमें देखना है कि इनसे हमें कौन कौन से फायदे हैं। यदि हम उनके फायदों को ध्यान में रखेंगे तब भी हम इनका बैलेंस रखने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे। और अगली बात है कि इनका इनसे नुकसान क्या क्या है, उसका नॉलेज भी जरूरी है। क्योंकि यदि हम इनसे होने वाले नुकसान के बारे में नहीं जानेंगे तब भी हम इनका बैलेंस रखने में सक्सेस नहीं होंगे, या फिर हम उसको अमल में नहीं लाएंगे। तो इनसे नुकसान क्या होता है, यदि दोनों का बैलेंस नहीं होगा तो टाइम वेस्ट होता है। यदि हमने बैलेंस नहीं रखा, यदि हमारा पलड़ा भारी है, साधनों में हम बहुत बिजी हैं, तो उससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, इससे हमारा हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है। और कई लोग तो साधना में ही लगे हुए हैं। कई लोगों ने पक्का किया है कि हमको मोबाइल नहीं रखना है, लेकिन यदि उनके लिए किसी का बाहर से मोबाइल आता है, किसी का मैसेज आता है, तो उनको फिर खोजना पड़ता है, और खोजने में दूसरों का भी संकल्प चलते हैं। तो इससे यह भी कितना बड़ा नुकसान है, लॉस है, कि हम दूसरों को संकल्प चलाने के निमित्त बनते हैं। और इससे क्या क्या नुकसान है, इससे क्या क्या नुकसान है, यह दोनों का बैलेंस नहीं है तो हाँ, इसके बैलेंस न रखने के कारण वर्तमान समय लोगों की नींद भी हराम हो गई है, नींद फिट गई है। और इनसे कई प्रकार के विकार भी पैदा होते हैं, क्योंकि इन साधनों में नेगेटिविटी बहुत है। तो यदि हमने दोनों का बैलेंस नहीं रखा, यदि हम साधनों के उपयोग में बहुत अधिक जा रहे हैं, तो इससे कई विकार भी इमर्ज होते हैं, क्योंकि आत्मा में संस्कारों में वो विकार पहले से भरे हुए हैं। तो संस्कारों को इमर्ज करने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हमें इसको बैलेंस में रख करके उपयोग में लाना है। और डिस्ट्रक्शन के न्यू आइडियाज, आजकल वर्तमान समय जो क्राइम चल रहे हैं, जो युवाओं में कई प्रकार के आपराधिक प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो साधनों के अति में गए हुए, उनसे वो नए नए आइडिया निकाल करके नए नए क्राइम करते रहते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं पॉलिटिशियन में, दूसरों को अकाउंट हैक करते हैं, कई ऐसे वीडियो भेजते हैं जो समाज के लिए नुकसानकारक होते हैं ऐसे झूठ बूट, लेकिन वो उसको सच बना करके भेजते हैं, तो उसमें भी कई लोग फंस जाते हैं, फ्रॉड दूसरों को। तो इसलिए साधनों का बैलेंस जरूरी है, यदि बैलेंस नहीं होगा तो इससे हमें बहुत बड़े नुकसान भी होंगे। और अगला है डिटैचमेंट। तो इन दोनों का लाभ लेने के लिए, दोनों के बैलेंस के लिए हमें बीच बीच में डिटैच होकर के दोनों को देखना है कि हम साधनों का कहां तक उपयोग कर रहे हैं और साधना को भी हम जीवन में कहां तक ला रहे हैं, दोनों का बैलेंस है या नहीं है। नहीं है तो हमें बैलेंस लाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तो इसलिए हमें डिटैच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिटैच होंगे तभी हम जान सकेंगे कि हम किसके अति में जा रहे हैं। नहीं, साधना अधिक नहीं हो रही है, साधना अधिक अगर होती है तो उससे तो और ही उन्नति होती है, लेकिन साधना को कहीं ना कहीं हमने एक अपने नहीं, किसी ने वो दृढ़ प्रतिज्ञा की हुई है कि हमें यही करना है, तो उसमें उनका एक ईगो होता है, वो वास्तव में वो रियल साधना नहीं होती है,
जो आधे उसमें अति में जाते हैं उनकी वो रियल साधना नहीं। रियल साधना वो है जिससे हम स्वयं भी कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करें और दूसरों को भी कंफर्ट का अनुभव हो, हमारी स्वयं की सेवा भी हो और अन्य आत्माओं की सेवा भी हो, जहां अनेक प्रकार का बैलेंस हो। जहां बैलेंस नहीं वो रियल साधना नहीं है। तो ये कुछ बातें थी। यदि हम इन हाँ दोनों का बैलेंस होगा तो सेवा सफल होगी, सेवा में कोई भी नुकसान नहीं होगा, उनसे आत्माएं नाराज नहीं होंगी। ये दोनों का बैलेंस होगा तो यदि कोई व्यक्ति साधना में ही लगा रहा है अपनी सेवा को छोड़ करके, तो इससे क्या दूसरी आत्माएं संतुष्ट होंगी, खुश होंगी? नहीं होंगी। तो इसलिए ब्राह्मण जीवन में हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जो बाबा ने अनेक प्रकार की कलाएं सिखाई हैं उसमें से जो साधन और साधना का बैलेंस रखने की कला है, इसको भी हमें जीवन में अप्लाई करके चलना है, तभी हम अपने मंजिल को हासिल कर सकेंगे। तो जो यहाँ जो कुछ बातें हमने डिस्कस की हैं उनको हमें बार बार अमल में लाना है, प्रैक्टिस में लाना है, तो हम इस जीवन में खुशी खुशी से, उमंग उत्साह के साथ, मौजों के साथ, हंसते बहलते आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति।
कर निखरेगा जीवन तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।